आज हमारे साथ हिंदुस्तान के मुमताज़ आलिम दीन मौलाना वलीउल हसन रिज़वी साहब होंगे, और आज का जो हमारा मौजू है वो करबला की शेर दिल खातून जनाब हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के बारे में, उनकी सीरत के बारे में, और उनके तमाम जो वाक़यात हैं, जो कारनामे हैं, करबला, करबला के बाद, करबला से पहले, विलादत के बाद, वो क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्यों और क्या और कैसे, जैसा कि आप जानते हैं हमारे सवालात होते हैं, तो हम एक बार मौलाना वली हुसैन साहब की खिदमत में चलते हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी मुबारकबाद इस पुरमसरत मौके पर हम पेश करते हैं, और खुश आमदीद कहता हूं आपको इस प्रोग्राम में, आपने जहमत की
इस पुरमसरत मौके के ऊपर, आपकी खिदमत में, अपने तमाम नाजरीन की खिदमत में सलाम भी पेश करता हूं और तबरीक भी पेश करता हूं।
शुक्रिया।
आज बहुत ही मुबारक मसूद दिन है, हज़रत फातिमा जहरा के घर में आज जश्न का सामान है।
बिल्कुल।
अमीर उम्मीन अलैहिस्सलाम को वो बेटी अता की है खुदावंदे आलम ने, जिसको खुद पैगंबर इस्लाम ने देखने के बाद कहा ये ज़ैनब है।
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा।
और ये इसरार भी फरमाया कि खुदावंद आलम ने अभी मेरे पास जिब्राइल को भेजा और ये ताकीद की कि मैं इस बेटी का नाम ज़ैनब रखूं, यानी ये बेटी अपने बाप के लिए जीनत।
माशाल्लाह, सुभानअल्लाह। नाजरीन, जैसा कि आपने सुना, मौलाना ने थोड़ी सी एक रोशनी डाली, अब हम तफसीली गुफ्तगू करते हैं, जनाब आपकी खिदमत में हैं। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जनाब ज़ैनब के बारे में एक पूरी कुल्ली तौर पर आप एक कोई अपनी चीज़ बयान करें, उनकी शख्सियत के बारे में, उनकी विलादत से लेकर।
जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत तारीख इस्लाम में, अगर मैं जसारत ना हो
जी,
तो जनाब फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा के बाद सबसे अजीमुल मर्तबा शख्सियत तारीख इस्लाम की जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हैं।
बिल्कुल, बेशक।
हत्ता उनकी नानी जनाब खदीजतुल कुबरा, जिनके लिए पैगंबर इस्लाम ने ये फरमाया था कि वो खुदा की मुंतखब चार ख्वातीन में से हैं, लेकिन चूँकि जनाब फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा को फ़ख्र कायनात कहा जाता है और वो तमाम उन चार ख्वातीन से भी अफजल व बरतर खुद पैगंबर की ज़बान में हैं, तो अब बकिया तौर पर अइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम ने ख़ुद हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को सानिये ज़हरा कहा है, और जब सानिये ज़हरा कहा है यानी जब उनका मद्दे मुकाबिल, और जब ये उस सतह के ऊपर आती हैं तो अब ज़ाहिर है कि जब जनाब फ़ातिमा दूसरी ख़वातीन से अफजल व बरतर हैं, हज़रत मरियम, हज़रत सारा, हज़रत आसिया, जब उन हज़रात से अफजल व बरतर हैं तो फिर सानिया ज़हरा भी उसी पैराए में आएगी। मैं ये अगर जसारत ना हो तो इसलिए मैंने कहा कि जनाब फातिमा ज़हरा के बाद सबसे बड़ी खातून आलम इस्लाम की जनाब ज़ैनब हैं, और इसकी वजह यह है कि जिस तरीके से जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने, शायद हमारे नाज़रीन इसकी तरफ मुतवज्जे न हो, मुकम्मिल रसूल थी, बज़ातु ज़हरा का यही मतलब है कि वो मुकम्मिल हैं पैगंबर इस्लाम की। उसी तरीके से अली इब्न अबी तालिब की न सिर्फ रसूल की, बल्कि यहाँ तीन मासूमों के साथ हज़रत ज़ैनब लफ्ज़ मुकम्मिल लगाने को दिल चाहता है कि मुकम्मिल अली हैं, मुकम्मिल हसन हैं, मुकम्मिल हुसैन हैं, इन सब के साथ उनकी ज़िंदगियों को कामिल किया है जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जिस वक्त, ज़ाहिर है कि जो 25 साल खामोशी का दौर था पैगंबर के बाद, उसमें ये भी उन्हीं के साथ मदीना मुनव्वरा में रहीं, लेकिन शादी के बाद अब जनाब ज़ैनब की शादी हो चुकी है, अब्दुल्ला के घर में रह रही हैं, और लेकिन मदीना मुनव्वरा से जब अली इब्न अबी तालिब कूफे जाने लगे तो उन्होंने कहा कि ऐ अब्दुल्ला, ज़ैनब भी मेरे साथ जाएंगी। यानी शौहर से ये कहना कि तुम अपनी बीवी को
हमारे साथ
भेजो और वो हमारे साथ जाएंगी
जी।
अब ज़ाहिर है कि जनाब अब्दुल्ला को भी इसी बुनियाद के ऊपर जनाब, यानी शौहर के साथ बीवियाँ जाती हैं यहाँ
भाई के,
भाई नहीं, खुद जनाब ज़ैनब के साथ अब्दुल्ला जाने पर मजबूर हैं कि वहाँ जा रहे हैं, और वहाँ गए और जनाब ज़ैनब कूफे यूं ही नहीं गईं एक आम दस्तूर के तहत के बाप के साथ चली गई, नहीं, वहाँ गईं तो वो मुकम्मल इमामत की हैसियत से गईं। अमीर उम्मीन अलैहिस्सलाम जो भी काम अंजाम देते थे, जो खुतबे अंजाम देते थे, जो लोगों के दरमियान तकारीर फरमाते थे, उनको ख्वातीन तक मुंतकिल करना जनाब ज़ैनब का काम था। और जनाब ज़ैनब वहाँ एक मदरसे की हैसियत रखती थी, जो ख्वातीन का तारीख़ इस्लाम में सबसे पहला मदरसा जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह को, अगर मैं ये कहूँ कि साहब पैगंबर के ज़माने में एक मदरसे की हैसियत रखती थी उनकी ज़ात, तो उसी तरीके से कूफे में, अलबत्ता मुझे तारीख़ के अंदर जनाब मदीने मुनव्वरा में इस तरीके का कोई यानी तारीखी शाहिद और सबूत इस तरीके का नहीं नज़र आता कि जिसमें जनाब फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि ने जाकर बाकायदा दर्स व बहस की एक कैफियत पैदा की हो, और उसको हम एक मदरसे, अगरचे आपकी ज़ाते गिरामी उस्वा थी और तमाम ख्वातीन आपसे उस नमूने के तौर पर उनसे इस्तेफादा करती थी, लेकिन कूफे में बाकायदा तौर पर एक मदरसे की हैसियत जनाब ज़ैनब की थी, और वो दर्स देती थी और लोगों को के दरमियान जा कर के तबलीग करती थी, और इस तरीके की सूरत हाल थी कि जब कूफे से इमाम हुसैन की शहादत के बाद ये गुजर रही थी तो वहाँ ख्वातीन आती थी, कहती थी अरे ये तो हमारी उस्ताद, हमारी मौलमा हज़रत ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लिहाजा ये कैफियत जो जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी ये मुनफरिद नज़र आती है।
गुफ्तगू थी उसमें एक सवाल हमारे जहन में आया कि अक्सर जो है वो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी के बारे में जो बातचीत होती है वो करबला के बाद होती है, या करबला में या करबला के बाद। हम आपसे जानना चाहते हैं कि करबला से पहले की ज़िंदगी के बारे में थोड़ी आप रोशनी डालें उसके ऊपर।
जी गुफ्तगू उसी सिलसिले में चल रही थी कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अव्वल तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ तकरीबन 5-7 साल गुजारे, जो अपनी माँ के साथ उनके गुज़रे और नाना के साथ गुज़रे, उसमें आपने अपने आप को मुरतब किया और आइंदा ज़िंदगी के लिए वो तमाम जो बुनियादें थीं इल्मी, फिक्री, नफ्सियाती, वो सब कुछ जो कुछ सीखना चाहती थी वो सीख लिया, और इतनी मुस्तहकम हो गई माँ की ज़िंदगी में ही कि अब वफ़ात के बाद जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जब वफ़ात हुई तो 6-7 साल की थी, लेकिन 6-7 साल की बच्ची जो है वो बाप के लिए कुव्वत बन गई, और इस तरीक़े की कुव्वत बन गई कि जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को महसूस होता था कि जनाब ज़ैनब के बाद बगैर उनके अगर वो ना हो तो अकेले महसूस करते थे और चाहते थे कि हर वक्त वो उनको उनके साथ में रहें। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहा की तरीक़े से आपकी तमाम बातों का ख्याल रखना, आपकी ज़िंदगी के लिए कहाँ क्या ज़रूरतें हैं, वो सब चीज़ें एक बेटी की हैसियत से वो पूरा करती रहीं। उसके बाद जब शादी हुई जनाब अब्दुल्ला के साथ ज़िंदगी आपने शुरू की, तो वहाँ भी हमको ये नज़र आता है कि इस दिवाजी ज़िंदगी एक नहायत ही कामयाब ज़िंदगी, अरब आम तौर पर आप जानते हैं कि कई शादियाँ करते हैं और कई चीज़ करते हैं, लेकिन जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जनाब अब्दुल्ला ने किसी तरीके की कभी कोई कमी महसूस नहीं की और कभी ज़रूरत महसूस नहीं की। बाद लोगों ने उनकी दूसरी शादियों वगैरह का जिक्र करके गोया एक चाहा है कि उनकी जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा की मौजूदगी में वैसे ही ये एक सिलसिला है, जब तक जनाब खदीजा ज़िंदा थी नबी अकरम ने कोई दूसरी शादी नहीं की, जब तक जनाब फ़ातिमा मौजूद थी अली इब्न अबी तालिब ने कोई दूसरी शादी नहीं की, और ये ख़ुद इस बात की ज़ामिन है कि जब तक जनाब, और ज़ाहिर है कि आखिर वक्त तक جناب عبداللہ کے ساتھ یہ رہیں، لہذا یہ سب بچے جو کہے جاتے ہیں کہ وہ دوسری بیوی سے تھے، ایسے ویسے تھے، ایسا نہیں ہے. جناب کربلا میں جو دونوں شہید ہوئے ہیں
جناب
اون و محمد، وہ بھی اہل سنت کی دائرۃ المعارف موجود ہے، پاکستان میں چھپی ہوئی، ہمارے اردو دا طبقہ اس کو بھی دیکھ سکتا ہے. ان کے ہاں بھی یہ اس کے اندر موجود ہے کہ جناب عبداللہ سے جناب زینب کے کتنے بچے ہوئے اور کون کون تھے. اس میں وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ ایک ازدواجی زندگی کس قدر کامیاب تھی کہ جناب زینب کے سب سے بڑے بیٹے کا نام علی تھا، اس کے بعد پھر اون ہیں، اون اکبر جو کہے جاتے ہیں، پھر ایک بیٹی ہیں جن کا نام ام کلثوم ہے، اور اس کے بعد پھر جناب جعفر ہیں، اور پھر محمد ہیں. یعنی اتنی زندگی، انہی میں سے علی جو ہیں ان سے جناب زینب کی اولاد آگے بڑھی ہے، اور زینبی جو کہے جاتے ہیں وہ علی کی اولاد ہیں،
اور زینب کے بڑے
جناب زینب کے بڑے بیٹے، انہی کا خاندان جو ہے وہ زینبی کہلاتا ہے. اور بقیہ جناب اون اور محمد، یہ تو کربلا میں شہید ہوئے، اور یہ دونوں جناب زینب کے اور جناب عبداللہ کے بیٹے تھے. یہ سب کہنا کہ وہ دوسری ماں سے تھے اور فلاں، یہ سب تاریخی طور پر ثابت نہیں ہے. وہ صرف بنت شاتی نے کچھ چیزیں لکھ دی ہیں، اور بھی کچھ دوسرے لوگوں نے سیکنڈری سورسز وغیرہ میں آ گئی ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں نے اس طریقے کی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف ازدواجی زندگی عبداللہ کے ساتھ نہایت ہی خوشگوار، دوسری طرف امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی کہنا چاہیے، حالانکہ بھائی بھائی کا قوت بازو کہا جاتا ہے، لیکن میں قوت بازو کی لفظ استعمال اگر نہ کروں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جناب امام حسن اور امام حسین کی پشت پناہ تھیں یہ. اور جناب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جو سن 40 سے لے کر سن 50 تک جب تک وہ زندہ رہے، اس میں بھی جناب زینب ہمیشہ ہر موقع کے اوپر اپنے بھائی کے ساتھ، یہی نہیں ہے کہ صرف کربلا میں امام حسین کے ساتھ آپ نے محبت اور بہن ہونے کا ثبوت پیش کیا، اور نہیں، اس کے پہلے بھی. اس لیے جو واقعات شہادت وغیرہ سے متعلق ملتے ہیں اس میں جناب زینب کا ذکر بار بار ملتا ہے. اے زینب، حتیٰ شہادت کے بعد جب، یعنی آپ کو جب زہر دیا گیا تو اس وقت بھی اے زینب، تشتت لال آ کر کے رکھنا اور بھائی کی خدمت اور دیکھ بھال کرنا، یہ تمام سب چیزیں بتاتی ہیں کہ جناب زینب ان کی زندگی میں بھی ویسے ہی وہ رول ادا کر رہی تھیں جو حسین کی زندگی میں انہوں نے کربلا میں انجام دیا ہے. اور اس کے بعد پھر 10 سال تک زینب، آپ کو میں ایک بہت چھوٹی سی مثال، ظاہر ہے کہ زیادہ وقت نہیں ہے، میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ مثال کے طور پر ایسی زندگی میں اہمیت تھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ جس وقت جناب زینب سلام اللہ تشریف لاتی تھی تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اسی طریقے سے سروقت جیسے جناب فاطمہ کے لیے پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے، اسی طریقے سے یہ سروقت کھڑے ہو جاتے تھے. اور اس کے بعد پھر جناب علی اکبر جو پیدا ہوئے، جو سب سے بڑے بیٹے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا ہوئے ہیں، تو جناب لیلہ جو ان کی ماں تھیں وہ، ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی پرورش جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کی، اور ایسی پرورش کی کہ 18 سال تک جو ان کو پال کر کے جب بڑا کر دیا تو پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کجا، اور ان کی عظمت کجا، اور ان کا مقام کجا، ان کی زندگی کجا. اور امام حسین جو معصوم ہیں، امام ہیں جو غلط کوئی بات نہیں کہہ سکتے، وہ کہتے ہیں کہ اے خدا گواہ رہنا، میں اب تیری راہ میں اس فرزند کو بیچ رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے رسول کی شبیہ تھا.
ماشاءاللہ، ایسا شبیہ رسول اس میں گفتگو کا سلسلہ ہم انشاءاللہ یہیں سے جہاں ہم روک رہے ہیں آپ پھر وہیں سے اس گفتگو کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کریں.
جی ہاں، وہ جناب علی اکبر کی پرورش سے متعلق میں نے یہ عرض کیا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنے فرائض کو انجام دے رہی تھیں. جناب زینب نے جناب علی اکبر کی اپنی آغوش میں پرورش کی، پالا اور علی کربلا کے لیے تیار کیا. اسی طریقے سے اون و محمد، ظاہر ہے کہ بھائی نے دیا تھا کہ میرے بیٹے کو پالو، تو پھر وہ یہ کیسے غفلت کر سکتی تھیں کہ اپنے آغوش میں ऐसे बच्चे पाल करके तैयार करें कि जो करबला में काम आए। लिहाजा उन्होंने कहा कि मैं अपने दो बच्चों को इस काबिल बना दूंगी कि जो करबला के अजीम सानहे में, और ज़ाहिर है कि करबला की शहादत जो है वो एक अजीम मर्तबा है। आप जानते हैं कि हमारे उलमा, और न सिर्फ हमारे उलमा बल्कि दूसरों ने भी ये बताया है कि हत्ता जंगे उहद और जंगे बद्र और जंगे खंदक वगैरह में शहीद होने वालों से भी कई मर्तबा करबला के शहदा का
मर्तबा
बुलंद है। इसलिए कि वो हालात और वो जिनमें इन्होंने शहादत पेश की है वहाँ नहीं थे, और उन्होंने जा कर के अपनी शहादत पेश की थी, लेकिन इनका मर्तबा इनके हालात और इनके मकासद और इनके अहदाफ की बुनियाद के ऊपर बहुत आला था। तो अब जाहिर है कि उसमें दो दो बच्चों को इस काबिल बना देना कि जो करबला के शहदा में, और ये सब जनाब अबू तालिब की औलाद से थे और जनाब ज़ैनब का एक बड़ा कारनामा है। अब मैं उस वक्त, लेकिन एक अहम पहलू जो मैं जनाब ज़ैनब, चूँकि अब जाहिर है कि ये रोज़े प्रस्तार भी है और नर्सिंग डे जिसको कहते हैं वो भी है, और जनाब ज़ैनब की मंजिलत को सामने रखना है, तो ये जहन में रहना चाहिए हमारे तमाम दोस्तदारान अहले बैत को, ख़ास तौर पर ख़वातीन को ये सोचना चाहिए अपने जहाँ के ऊपर कि हम सिर्फ जनाब ज़ैनब का ज़िक्र कर लें और उनसे कुछ हासिल न करें, ये हमारी यानी गोया है कि कम सआदती होगी। इसलिए हमारी ज़िंदगी में उनको आना चाहिए और उन सीरत ज़ैनब को हमारी ज़िंदगी में रच बस जाना चाहिए। सवा दो महीने तक हम इनका ज़िक्र सुनते हैं, इनके हालात सुनते हैं, और ताज्जुब होता है कि जिस मुआशरे के अंदर जनाब ज़ैनब का ज़िक्र होता है वहाँ ज़ैनब के किरदार से सबक लेने के लिए हम लोग कभी तवज्जो नहीं करते। सोचिए ज़ैनब सिर्फ हमारे, अगर हम थोड़ी देर सोच लें तो हमारे घर सुधर जाएंगे। इसलिए कि ज़ैनब तन्हा नहीं हैं, ज़ैनब के साथ उनकी बहन उम्मे कुलसूम भी हैं, ज़ैनब के साथ उनके भाई हसन और हुसैन और अब्बास और ये सब भी हैं, ज़ैनब के साथ रबाब उनकी भावज और जनाब उम्मे फरवा उनकी भावज ये लोग भी हैं। और ये देखिए कि जनाब ज़ैनब एक ख़ानदान में रहती हैं तो अपनी भावज के साथ कैसे पेश आती हैं। आज अगर ये दर्स हम लें तो फिर नन भावच के जो झगड़े हमारे मुआशरे में हैं वो कभी सामने ना आए। इसलिए कि ज़ैनब ने रबाब से कभी कोई तन कलामी की हो, जनाब उम्मे फरवा से कभी कोई ज़ोर से गुफ्तगू की हो जो उनको नागवार हुई हो, हमको ये नज़र नहीं आता। जनाब ज़ैनब और उम्मे कुलसूम का किरदार जो है, दोनों बहनों बहन किस तरीके से ज़िंदगी बसर करे, ये एक नमूना अमल होना चाहिए कि हम कैसे ज़िंदगी करें। ज़ैनब अपनी उम्मे कुलसूम के साथ कैसे पेश आती थी, उम्मे कुलसूम ज़ैनब के साथ कैसे पेश आती थी, भाई बहन सौतेला भाई जो कहते हैं, जनाब अब्बास और जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम का क्या अंदाज़ है। आप देखें कि अब्बास काबू में नहीं आते तो फिर जनाब ज़ैनब का सहारा लिया जाता है, और ज़ैनब की बात सुन के अब्बास अपनी तलवार न्याम में रख लेते हैं और सर झुका के सामने आ जाते हैं। भाई बहन का ये किरदार कहाँ है हमारे मुआशरे में, हम इसको बनाएं। सकीना भतीजी हैं, वो कैसे पेश आती हैं जनाब ज़ैनब के साथ, यानी चचा के साथ उनकी मोहब्बत तो अक्सर लोग जिक्र करते हैं, लेकिन जनाब सकीना और जनाब ज़ैनब का रंदाज क्या था, किस तरीके से दोनों फूफी और भतीजी के दरमियान क्या रिश्ता था, क्या इसको हमारी ज़िंदगी के अंदर पैदा होना चाहिए, हमको उससे सबक हासिल करना चाहिए। यानी करबला एक दर्सगाह है तो सिर्फ इशारों कुर्बानी और शहादत की दर्सगाह नहीं है, ये ज़िंदगी की दर्सगाह है, ये हयात की दर्सगाह है, हमको एक दानिशगाह है ज़िंदगी समझ के करबला पर निगाह डालनी चाहिए और वहाँ से सब कुछ हासिल करना चाहिए। और जनाब ज़ैनब इस पूरी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं,
सुभान अल्लाह,
और वहाँ उनके इशारों पर तमाम काम हो रहा है। उन्होंने अगर कह दिया माँ रहे तो इल्ला जमीला दरबारे इब्ने ज़ियाद में, तो इतनी ख़वातीन वहाँ बैठी थीं, उनमें से असहाब की भी बीवियाँ भी थीं और दूसरे लोग भी थे। कोई एक कहता कि आप ये इतना सब कुछ खोने के बाद आप कह रही हैं माँ रहे तो इल्ला जमीला, कहने की ज़ैनब ने खाली नहीं कहा, ये उनके मुँह से निकला है, लेकिन ये तर्जमानी कर रहा है उन सब की जो उनके साथ में हैं। लिहाजा تمام خواتین جناب زینب کے ساتھ ہیں. سید سجاد وہی محسوس کر رہے ہیں جو زینب کہہ رہی ہیں. یہ ایک بڑی اہم چیز ہے. اس کے بعد پھر مدینہ منورہ میں جب آپ پہنچتی ہیں اپنے بھائی کو کھو کر, اپنے ایک جملہ بھی تاریخ کے اندر کہیں نہیں ملتا کہ جناب عبداللہ جو ان کے شوہر تھے انہوں نے کوئی شکوہ کیا ہو کہ آپ مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھیں, اور یہ سب صورت نہیں. بلکہ دنیا کو دیکھنا چاہیے بیویاں کس طریقے سے, جناب علی کی بیٹی ہیں, حسن حسین کی بہن ہیں, لیکن جب مدینے سے رخصت ہو رہی ہیں تو یہ نہیں ظاہر ہے وہ غش میں تھے یا بیماری کے عالم میں تھے تو جا کے ان کا بازو ہلا کے کہہ سکتی تھی کہ بھائی میں کربلا جا رہی ہوں, آپ کی اجازت ہے یا نہیں, تو بھی کافی تھا. لیکن نہیں, آئیں پائتی آ کے شوہر کے کھڑی ہو گئیں, اور کھڑی ہونے کے بعد آنکھوں سے آنسو ٹپکے, پاؤں پر جیسے ہی آنسو ٹپ کے قطرے گرے عبداللہ نے آنکھیں کھولی, آئے شہزادی آپ مجھے گناہگار کر رہی ہیں. یہ انداز سے زن و شوہر کا یہ بتا رہا ہے کہ ہم کو اپنی عملی زندگی میں ان کے کردار سے اپنا کردار سنوارنا چاہیے. اور واقعی حقیقت یہی ہے کہ زینب ایک زندگی ہیں, ایک حیات ہیں, اور اسلام ہیں, ایمان ہیں. اگر ان سب کا نام
جمع کر دیا جائے تو ایک زینب کی شکل, جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ایک ماں کو اگر دیکھنا ہے تو جناب زینب میں دیکھیں, ایک بہن کو دیکھنا ہے تو جناب زینب میں دیکھیں, ایک بیٹی کو دیکھنا ہے تو جناب زینب میں دیکھیں. یعنی پورا ایک مجموعہ ہے, ایک گلدستہ ہے, ایک ایسا کہ جس سے پوری دنیا میں جو ہے ہر کردار کو خوشبو مل سکتی ہے. مختصر
الفاظ میں یہی کہا کہ اسلام ہے زینب.
بالکل, شکریہ بہت بہت مولانا ولی حسن صاحب, بہت بہت شکریہ. واقعاً بہت ہی اچھی گفتگو یہاں پر رہی, اور بہت اچھی باتیں آپ نے اور جناب خاص کر جناب زینب کی زندگی کے بارے میں, ان کی سیرت کے بارے میں بیان کیا. آپ یہاں تشریف لائے اس کا بہت بہت شکریہ, جتنا ادا کریں کم ہے
نہیں. اور آخر میں تمام اپنے ناظرین کی خدمت میں تہنیت و تبریک پیش کرتا ہوں.
شکریہ بہت بہت.